many of the Jewish people were living in very close to the Sea of Galilee, and if they want to go, the people who live in the region of Galilee, if they want to go to Jerusalem, normally they will not cross Samaria and go. That is the shortest way. Rather, they just cross Jordan, River Jordan at Galilee, and then they walk through the wilderness, then they reach close to Jerusalem, then again they cross the river, and then they go like that, you know, because they never want to see that they are passing through Samaria, because they consider it as a city or a region that is cursed.
उन दिनों में जो लोग यरूशलेम में रहते थे और उनको अगर गलील जाना होता था तो वे सामरिया से होकर नहीं जाते थे, लेकिन वो यरदन नदी के किनारे किनारे होते हुए जंगल के रास्ते से होकर उस स्थानों पर जाते थे.
So what I said, Jesus was choosing to go through Samaria.
और मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है सामरिया से होकर जाने का चुनाव करता
है. Because he was concerned about the people there.
क्योंकि वो वहां के लोगों के प्रति चिंतित था.
The Jewish people were not concerned about the people, but Jesus was concerned about those
Yehudi
people.
लोग वहां के लोगों के प्रति चिंतित नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह थे.
And even Jesus was choosing to go through Jericho.
और यीशु मसीह यरीहो जाने का भी निर्णय लेता है.
This is the first lesson we need to learn from this passage.
हमें इस भाग से ये पहली सबक लेना चाहिए.
That Jesus is not concerned about people on the high end of religiosity. Rather, he was much concerned about people who are sinners and those who are need.
यीशु मसीह उन लोगों के की ज्यादा परवाह नहीं करता है जो एकदम धार्मिक उच्च स्थानों पे हैं, लेकिन उन लोगों की भी परवाह करता है जो दीन है या जो पापी कहलाते हैं.
Even he was ready to go through a cursed city. He was not just avoiding Jericho, but he was going through that city and he was seeing people who were sinners in that place.
यहां तक कि यीशु मसीह उन उस पापी शहर में जाने के लिए भी तैयार होता है जहां पर और लोग जाना पसंद नहीं करते थे.
The religion is always condemning people, and you know, they just want to see that, oh, you sinner, and say or you know, want to see that they are staying very far from them, but Jesus always want to see that he is going close to them.
यीशु मसीह ये नहीं देखना चाहते थे कि पापी लोग उससे बहुत दूर रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ये चाहता था कि लोग वो उन लोगों के पास जितना नजदीक जा सके उनके पास जाए.
एंड आई ऑलवेज थिंक इफ ही वाज लाइक अदर रिलीजियस पीपल आई वुड हैव नेवर गेट एन एक्सेस टू जीसस क्राइस्ट.
और अक्सर मैं सोचता हूँ कि यीशु मसीह भी अगर अन्य धार्मिक अगुओं के जैसा होता तो हम कभी भी उस तक नहीं पहुंच पाते.
When I was a small boy, I used to read the epics of Hindu religion.
जब मैं छोटा था तो हिंदू धर्म का एक वाक्य पढ़ा करता था.
I really loved when I was a young boy, I really loved the stories of all the gods and goddesses.
और जब मैं बहुत छोटा था तो मैं उन देवी देवताओं की कहानियों को बहुत पसंद करता था.
All the time I was thinking about the incarnation of God coming down to this world.
और मैं ईश्वरों के जो इस पृथ्वी पर अवतार लेने की जो कहानियां हैं उनके विषय में अक्सर सोचा करता था.
And I was just looking awfully to them, and I was just wondering, oh, how strong they are. They are redeeming the righteous people from the hands of the wicked people.
और अक्सर मैं उनको बहुत हीरो टाइप देखता था और कहता था कि अरे वो कैसे अद्भुत लोग हैं, अद्भुत रीति से उन लोग इस पृथ्वी पर आए और वो पापियों के हाथों से धर्मी लोगों को बचाते हैं.
I love to become like them, powerful, taking big maybe mountain in my finger and things like that.
और मैं अक्सर उनके जैसे बड़े बड़े काम करना चाहता था, जैसे एक उंगली पर पर्वत उठा लेना और ऐसे ऐसे काम मैं चाहता था.
I really loved them. Those people were in my dreams when I was a small boy.
और मैं जब छोटा था तो मैं उन अवतारों को अपने सपनों में देखा करता
था. But then I understood one thing. All these people came to save the saintly people, not the sinners.
और तब मैंने एक बात को जाना कि ये सारे जो अवतार हैं वो धर्मी लोगों को बचाने के लिए हुए हैं.
एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग वन मोर इनकार्नेशन इज कमिंग. दैट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हिंदू पीपल दैट 9 इनकार्नेशन इज ओवर एंड द 10th वन इज कमिंग.
और मैं ये भी सोचता था कि जैसे हिंदू मान्यता में कहा जाता है कि 9 अवतार हो चुके हैं और एक और अवतार होने वाला है.
फ्रेंड्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग दोज स्टोरीज एंड ऑल. I never want to do that, but I tell what was in my mind when I was a young boy.
मैं उन कहानियों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में जो था मेरे बचपन में वो बात मैं आपको बताना चाह रहा
हूँ. I just started thinking.
मैंने ये सोचना प्रारंभ किया.
इफ एनी गॉड लाइक दैट इज कमिंग टू दिस वर्ल्ड,
अगर ऐसा कोई ईश्वर इस संसार में आता,
व्हाट ही विल डू विद मी,
वो मेरे साथ क्या करता?
He will kill me because I was not a good boy. I was a wicked guy.
वो मुझे मार डालेगा क्योंकि मैं बहुत अच्छा लड़का नहीं था.
So the gods and goddesses of the Eastern religion were always in favor of the righteous people, the big people, the religious people. In fact, I could never expect something good from those gods and goddesses.
और इसलिए उन जो पूर्वी देशों के जो धर्म हैं, उनके जो देवी देवता हैं या जो अवतार हैं, उनमें से हम कुछ भलाई की अपेक्षा नहीं कर सकते थे.
In fact, good people, maybe they get all the benefits of an incarnation, but I certainly believe that I would never get any benefit from these gods because I was a wicked man.
हाँ, जो भले लोग हैं उनको इन अवतारों से लाभ होगा, उनका फायदा होगा, लेकिन मेरे जैसे लोगों को इससे कोई लाभ नहीं होगा.
So I wanted somebody who is coming for sinners.
और इसलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को चाहता था जो पापियों के लिए आए.
Wicked people like me.
मेरे जैसे दुष्ट लोगों के.
I could not find a god or a goddess who is coming for the wicked people. All those gods and goddesses were coming for the righteous people. So, in fact, you know, I couldn't find any good in that. Or, you know, even if those another incarnation is coming, and even if that incarnation is coming, I would be beheaded. Because I was a wicked person.
और मैं अक्सर ये देखता था कि इसमें कोई भली बात नहीं है कि सारे अवतार जो हैं वो धर्मी लोगों के लिए आए, पापियों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, और ये जो अवतार आने वाला है वो भी शायद पापियों के लिए कुछ ना करे.
That's the time when I was reading and understood about Jesus that he came here not for the righteous people, he came here for the sinners.
और यही समय था जब मैंने यीशु के विषय में जाना कि उस वह धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया.
Then I understood there is only one God who came for me. All the other gods were coming for big people. Only one God came for me, and that is Jesus Christ.
और केवल तभी मैंने जाना कि जितने भी अवतार हैं वो धर्मी लोगों के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह जो है मेरे जैसे पापियों के लिए आए.
I tell you, my friends, I'm not, you know, I never want to condemn all the religions and things like that and their religious understanding, but I'm telling what I felt when I was reading these stories.
मैं धर्मों की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन बातों को पढ़कर या इनको सुनते हुए मैंने क्या महसूस किया.
I thank God because Jesus came here not for the righteous people, but he came for a sinner like me.
मैं निश्चय ही परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों के लिए नहीं लेकिन मेरे जैसे पापियों के लिए आया.
So we can go to the people and say, Jesus came for you and me.
और इसलिए हम लोगों के पास जाके कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए भी आया.
एंड इवन इफ यू आर अ सिनर यू हैव होप बिकॉज जीसस केम हियर नॉट टू सीक द राइटियस पीपल बट ही केम हियर फॉर द लॉस्ट.
और आप लोगों के पास जाके कह सकते हैं कि यीशु मसीह उन खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है.
एंड ऑफकोर्स इन दिस स्टोरी व्हेन वी रीड इट आई टेल यू माई फ्रेंड्स that we need to understand Jesus as our God because he came here because he loved us and it is his love that he showed towards us when we were yet sinners. That's what Paul says in Romans chapter 5, that when we were yet sinners, he died for the ungodly.
और इसलिए जैसे कि पौलुस रोमियो 5 अध्याय में कहता है कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया, वैसे ही हमको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अपने जीवन में यही महसूस किया कि यीशु मेरे जैसे पापी को बचाने के लिए इस संसार में आया है.
बट हिज सेविंग एक्ट और द ब्लेसिंग ही वाज हिज ब्लेसिंग अपॉन ज़ाकेयस और एनी द ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस इज नॉट अनकंडीशनल.
और उसकी यीशु मसीह की जो आशीषें हैं वो निशर्त नहीं है.
It is sometimes, you know, people say it is unconditional. He is just blessing all the people. Of course, he is ready to bless all the people, but it is not unconditional. There is only one condition, and that is written here. You need to repent.
और कई बार हम लोगों को ये ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि परमेश्वर बिना शर्त सबसे प्यार करता है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है. वहाँ पर एक शर्त बताया गया है, वो है कि हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता.
He loves you, but if you want to see that the love turns to be a blessing, you need to receive it. If you want to receive it, you need to turn to God. Otherwise, you know, you cannot receive it. And that's the reason why, you know, of course, his love is unconditional, but his blessing is conditional.
उसका प्रेम हमारे प्रति हमारे साथ हमारे पास जो है वो बिना शर्त के आता है, लेकिन उसकी आशीष जो है वो शर्त के साथ आती है, और वो है कि हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है.